ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यं प्रवदन्तमनुपेत्य अपेत्यकृत्यं दैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयातरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मणिमान्नतुस्मे यस्यानुभावखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपतितिर्श्रुतां तमुन्नं संसारिणां करुणायाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 6, chapter number 4. The name of the chapter is Hansa Guhya Prayers, text number 4. Sri Suka Uvacha Yada Prachetasaha पुत्रा दश प्राचीन बर्हिषः अन्तः समुद्रा उन्मग्ना ददृशुर् गां द्रुमैर् वृताम्। यदा प्रचेतस पुत्रा दश प्राचीन बर्हिषः अन्तसमुद्रात् उन्मग्ना ददृशुर्गां द्रुमैर्वृताम्। यदा प्रचेतस पुत्रा दश प्राचीन बर्हिषः अन्तसमुद्रात् उन्मग्ना ददृशुर्गां द्रुमैर्वृताम्। श्रीशुक उवाच यदा प्रचेतस पुत्रा दश प्राचीन बर्हिषः अन्तःसमुद्रात् उन्मग्ना ददृशुर्गां द्रुमैर्वृताम्। श्रीशुक उवाच प्रचेतस पुत्र प्रचीन Matadis. What your translation? Sri Sukhavacha. Sukadev Goswami said, Yada, when Prachetasaha, the Prachetas, Putraha, the sons, Dasa, ten, Prachina Varihishaha, of King Prachina Varihi, Antaha, Samudrat, from within the ocean, Unmagnaha, emerged, Dadrishuhu, Desa, Gam, the entire planet, Drumeir Vrutam, covered with the trees. Translation and purport by the Divine Grace, S. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj Ki. Sukadeva Goswami said, when the ten sons of Prachinavari emerged from the waters in which they are performing austerities, they saw that the entire surface of the world was covered by trees. Purport. When King Prachinavari was performing Vedic rituals in which the killing of animals was recommended, Narada Muni, out of compassion, advised him to stop. Prachinavari understood Narada properly and then left the kingdom to perform austerities in the forest. His ten sons, however, were performing austerities within the water, and therefore there is no king to see to the management of the world. When the ten sons, the Prachetas, came out of the water, they saw that the earth was overrun with the trees. When the government neglects agriculture, which is necessary for the production of food, the land becomes covered with unnecessary trees. Of course, many trees are useful because they produce fruits and flowers. But many other trees are unnecessary. They could be used as fuel and land cleared and used for agriculture. When the government is negligent and less grains is produced, as stated in the Bhagavad Gita, chapter 18, text number 44, Krishi Gorakhya Vanijyam Vaishyakarma Shubhavajam. The proper engagements for Vaishyas, according to their nature, are to farm and to protect the cows. The duty of the government and the Kshatriyas is to see that the members of the third class, Vaishyas, who are neither Brahmanas nor Kshatriyas, are thus properly engaged. Kshatriyas are meant to protect human beings, whereas Vaishyas are meant to protect useful animal, especially cows. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakhyurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manoveshtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Shupadantikam Vandeyam Sri Guru Sri Yukta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavasa Sri Rupa Krajatam Sahagana Raghunatha Nitantang Sadivam Sadvaitam Savadhuta Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Visakha Nitas He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Rundavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Ripriye Vancha Kalpataru Vesa Krupa Shrindhu Bhayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namana Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Mahamantra Ki Jai. Sri Shuka Vacha Yada Prachetasa Putra Dasa Prachina Varihishaha Antas Samudrad Unmagna Dadrishur Gadrumei Pratam Sukadeva Goswami said, when the 10 sons of Prachinavari emerged from the waters in which they were performing austerities, they saw that the entire surface of the wall was covered by trees. Srimad Bhagavatam, Hindi mein kaho? Prabhu, Hindi mein? Hindi mein? Srimad Bhagavatam is called Adhyatma Dipa, you know, and Srimad Bhagavatam is also called sun. Srimad Bhagavatam is also called Rasamaya Phalam, and Srimad Bhagavatam is also called Mohini. From different sections of Bhagavatam, Sukadeva Goswami is explaining all these things, how Srimad Bhagavatam is called Adhyatma Deepa, and Srimad Bhagavatam is called sun, and Srimad Bhagavatam is called Rasamaya Phalam, and also Srimad Bhagavatam is called Mohini. Mohini means Mohini Avatar, jo kehte hain inme. So, deep, Adhyatma deep means wherever we are putting the light, जहाँ पर हम दीप जलाते हैं, हिंदी में मैं कहता हूँ, जहाँ पर हम दीप जलाते हैं, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश होता है, संपूर्ण तरह से प्रकाश नहीं होता है। तो श्रीमद् भागवत अमर पुराण है, तो फिर उसको इसी श्लोक में कहा गया है, यस्यानुभव अखिलम श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीप अवतित। इस श्लोक से पता चलता है कि ये सूर्य के समान है, क्योंकि घने अंधकार को दूर करता है, परंतु इसको कहते हैं कि अध्यात्म दीप तिरशतम तमोंधम। क्यों कहते हैं, वहां पर कहा गया कि क्योंकि इसी के अंदर भागवत को अगर कोई जनरल अंडरस्टैंडिंग से सिर्फ पढ़ ले अथवा पाठ कर ले, तो फिर उसका अगर साधारण रूप से समझ में आ जाती है, जनरल अंडरस्टैंडिंग, इफ इज अंडरस्टैंडिंग जनरली समथिंग फ्रॉम भागवतम, देन तापत्रयोनुमूलनम, उसका तापत्रय हो जाता है, जो कष्ट पाता है, दुख पाता है, वो दुख नष्ट हो जाता है। साधारण अगर समझ लेते हैं कुछ कुछ, तो फिर तापत्रय नष्ट होता है, सुख मिलता है उसको। सो अगर भागवत कहा गया कि सूर्य है, अगर भागवत सूर्य माना जाता है, तो फिर उसके अंदर खियंत चास्य कर्माणि छिंद्यंत सर्व संशयाः, भागवत के तत्वों को विचार करे, तो फिर इसी के सारे संशय, सांसारिक संशय, सिद्धांतों का संशय को दूर करता है। ये संशय को दूर करके हमको भक्ति में एस्टेब्लिश करता है, इसके कारण ये सूर्य है। और भागवतम को रसमय फल कहा जाता है, निगम कल्प तरोर्गणितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुक्तम। भागवत में रस है, वो कैसे वो वर्णन करते हैं, आदि मध्य अवसानेशु, द्वादश स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आदि मध्य अवसानेशु वैराग्य आख्यान संयुक्तम, कहते हैं कि आदि मध्य अवसानेशु वैराग्य आख्यान संयुक्तम हरि लीला कथा वार्ता, हरि लीला कथा वार्ता, हरि लीला कथा वार्ता, ये हरि लीला कथा वार्ता के द्वारा, हरि लीला कथा वार्ता के द्वारा यह तो सूरम कहा जाता है कि हरि लीला कथा वार्ता के द्वारा सूर जो होते हैं, देवताएं जो होते हैं, जो इसके अधिकारी होते हैं, वही पान करते हैं। कहते हैं कि जो निगम कल्प तरोर गणितंग फलम सुखम होता, और द्रव संयुक्तम, द्रव संयुक्तम जो कहा गया है, वो यहां पर भी कहा गया है, आदि मध्य अवसाने से वैराग्य आख्यान संयुतम। तो संयुतम शब्द से प्रतीत होता है कौन सा द्रव्य का मिश्रण है भागवत में, जिसको ला करके हरि लीला कथा वार्ता ये सब चीज करके जा करके द्रव्य को आस्वादन करते हैं, वो द्रव्य है वैराग्य आख्यान संयुतम। संयुतम का अर्थ है उसके अंदर कुछ मिश्रित है, वो क्या है ना, वैराग्य। वैराग्य रूप को हरि लीला कथावार्ता के अंदर गमन करते हैं, हरि लीला में प्रवेश करते हैं। भोग से हम हरि लीला कथा में प्रवेश नहीं कर सकते, अगर प्रवेश कर दिया जाए तो फिर उसको निकाल लिया जाता है सिक्योरिटी के द्वारा, ट्रांसेंडेंटल सिक्योरिटी जो रहते हैं भगवान के, उनको निकाल लिया जाता है, जो आप फिर परफेक्ट पर आकर के फिर आ जाओ। अर्थात वैराग संयुतम, वैराग को प्राप्त करके हरिलाल कथा को श्रवण करके फिर आओ। जैसे मंदिर में अगर कोई जबरदस्ती घुस जाता है आदमी, तो फिर उसको निकाल लिया जाता है समय पर ना करके, तो फिर ऐसे ही। तो इसी का कहते वैराग के आख्यान संयुतम, हरिलला कथा वार्ता यत सूरम कहा गया है, अर्थात वो सूरगण पान करते हैं इसी को अपने वैराग्य के द्वारा, अर्थात जो भक्त होते हैं। इसी के कारण सूर शब्द से प्रतीत होता है कि ये मोहिनी है भागवत। किसके लिए मोहिनी है? जो भगवान के भक्त होते हैं, वो कहते हैं, सुनते हैं, हरिलला के बारे में चर्चा करते हैं। तो कैसे रस का स्वादन कहां पर होता है? वो कहते हैं कि जहां पर हरिला कथावार्ता जो श्लोक होता है, शुद्ध गोस्वामी कहते हैं द्वादश स्कंद भागवत में कि ओनली एक जगह पर होता है। एक तो वैराग्य की आवश्यक है जहां पर रस के आस्वादन होता है, इसके कारण इसको रसमय फलम कहा जाता है, जो एक पेड़ के वास्तविक अल्टीमेट चीज है और कुछ इसके बाद है ही नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि वो हरि लीला कथावार्ता जो है उसके अंदर जो आश्रित होता है, उसमें जो गमन करते हैं, बस वही होता है रसमय फलम, जो आश्रय का विषय वस्तु है। भागवत में 10 विषय वस्तु पाया जाता है और आश्रय का विषय वस्तु यही है कि हरि लीला के अंदर हम आश्रय लेते हैं, अथवा ओनली प्योर उनके बारे में ही बातचीत करते हैं, शुद्ध हरि कथा और कुछ नहीं। यद्यपि भागवत महाभारत को रचना किया गया था ग्राम्य कथानुवाद, ग्राम्य कथाओं के द्वारा उसको रचित किया गया था, लेकिन हरि लीला कथा विमल रूप में नहीं था, इसके कारण उनको रचना कर दिया गया था व्यासदेव जी के द्वारा, नारद मुनि के उपदेश के द्वारा। इसके कारण आश्रय विषय वस्तु को डाल दिया गया था, जो शुद्ध हरि कथा को श्रवण करे तो फिर रसमय फल को के वास्तविक रस को वो आस्वादन कर सकते हैं। तो फिर ये जो अध्यात्म दीप और अर्क के बीच फर्क क्या है? भागवत कई कई विषय वस्तु, कई कई श्लोक भागवत के अंदर आता है, कई कई स्थान पर कई कई श्लोक वर्णन होता है, उस कई कई श्लोकों के अंदर भागवत का सिंपल अंडरस्टैंडिंग होता है, जो अंडरस्टैंडिंग हम वेदों में प्राप्त करते हैं, दूसरे पुराणों में प्राप्त करते हैं साधारण रूप से, और उसी वो प्रकार के जो भक्त है जिनका जनरल अंडरस्टैंडिंग है, वो सिर्फ भागवत को दीप के रूप में समझेंगे, उनके लिए दीप ही है भागवत। भले ही सूर्य के समान भागवत हो सकता है, जैसे सूर्य सुबह उग जाता है तो फिर संपूर्ण रूप से लाइट इत्यादि तो दिखाई पड़ता है, कहां पर एक धूल गिरा पड़ा है उसको भी आदमी देख करके उठा लेता है, झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, उसके लिए भागवत इतना ये तो खियत चास्य कर्माणि, भागवत के वास्तविक तत्व को अनुभव किया है जो सारे कलमस को नष्ट कर लेता है, एक से बढ़कर एक जितना कलमस उसके हृदय के अंदर है वो सारा नष्ट हो जाता है, इतना उसके अंदर भरा है। क्या ना द्रव्य संयुक्तम, सिद्धांत का द्रव्य, जनरल अंडरस्टैंडिंग का द्रव्य, रस का द्रव्य, मोहिनी का द्रव्य इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए इसको अध्यात्म दीप कहा जाता है, क्योंकि इसके एक विषय वस्तु है सर्ग, अर्थात क्रिएशन के बारे में, सृष्टि के बारे में बताया गया है, और एक होता है निरोध। निरोध का अर्थ है संसार के जो विलीन होता है अथवा प्रलय होता है, निरोध होता है अथवा संसार नष्ट हो जाता है। तो फिर वो विषय वस्तु को करके साधारण रूप से समझ लेता है, तो फिर इसी को कहा जाता है कि अध्यात्म दीप, अथवा इसी दृष्टिकोण से जो देखते हैं भागवत को, जैसे हम प्रथम स्कंद भागवत पढ़ते हैं अथवा द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद इत्यादि जितने स्कंद पढ़ते हैं, आप लोग अपने आप को प्राप्त कर सकते हो आपका इंटरेस्ट कौन सा फील्ड में है, अथवा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं हमारा इंटरेस्ट कौन सा फील्ड में है। हमारा इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में होगा, अगर हमारा इंटरेस्ट क्रिएशन अथवा निरोध के फील्ड पर होता है, तो फिर हम लोगों को ये भाग्यवतम का अध्यात्म दीप अथवा दीप जैसा प्रकाशमय होता है हमारे लिए, अथवा कहीं पर एक दीप रख लेते हैं तो फिर वहां धूल की नजर नहीं आता है, संपूर्ण रूप से हम ठीक तरीके से झाड़ू नहीं लगा सकते। ठीक वैसे ही भागवतम उनके लिए दीप के समान है, क्योंकि विषय वस्तुओं को ज्यादा तरीके से वो समझते नहीं। और भागवतम जो होता है जिसके लिए अर्क के समान है, कृष्ण सुधाम अपगते धर्म ज्ञान आदि विषय कलो नष्ट मधुस्वामी से पुराण अर्क अधुना उदित। अर्क का जिसका अर्थ है सूर्य, वो जो उदय हुआ है वो सूर्य किसके लिए होता है? जो और सारे दूसरे विषय वस्तुओं को पढ़ते हैं, जैसे सर्ग विसर्ग स्थान पोषणम उत्तय मन्वंतरे, और जो आठ विषय वस्तु, एक अंतिम विषय वस्तु आश्रय को छोड़कर के और जो सात विषय वस्तु हैं वो उनके लिए क्या है ना, सूर्य के समान है, जो उनको सिद्धांत को खोल करके उनको भक्ति की, शुद्ध भक्ति की तरफ खींचता है। तो शुद्ध भक्ति की अभ्यास करने की इच्छा पैदा होता है, और फिर जब वो शुद्ध भक्ति अभ्यास करता है, सिर्फ अपना मन हृदय सब कुछ हरि लीला कथा वार्ता इत्यादि में लगता है, तो फिर समझना चाहिए कि ये और के समान हमारी तरफ प्रतीत हो रहा है। जब तक वो रस का आस्वादन नहीं करता तब तक ये रसमय फल के रूप में उसको अनुभव नहीं होता। जैसे क्लास में हम बैठते हैं, भागवत के सिद्धांत को समझ करके अगर कुछ आनंद का अनुभव तुरंत हो जाता है, एक क्षण के लिए फल हो तद रसामृत तृप्त से, तो फिर समझना चाहिए कि ये रसमय फल का एक बूंद हमारे जिह्वा में लगा है जिसको हम प्राप्त करते हैं। फिर इसको मोहिनी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि भागवत को असुर लोक के लिए डिफरेंट होता है, जैसे मायावादियों के लिए कृष्ण निराकार हैं इत्यादि इत्यादि संपूर्ण, तो उनके लिए अथवा कई लोगों के लिए असुर के समान भागवत, कृष्ण असुर के समान भागवत उनके लिए क्या है ना, शत्रुता के सिद्धांत के हिसाब से उनके लिए प्रकाशमान होता है उनके तरफ, तो ऐसे ही भागवत उनके लिए ठीक नहीं है, तो भागवतम सुरों के लिए अथवा जो अधिकारी होते हैं भागवत के उनके लिए ठीक है। तो इसी भागवत के अंदर यही जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं हंसगुह प्रेयर में, यहां पर श्री शुकदेव गोस्वामी इसी श्लोक में प्रचेताओं के बारे में वर्णन करते हैं कई सारा चीज, एक चीज वर्णन करते हैं तो फिर उसी के पर्पट में शिला प्रभुपाद जी कई सारा इंपोर्टेंट चीज बताते हैं हमको। और उसके अंदर एक तो बताते कृषि गोरख्यावाणी जो वैश्य कर्म स्वभावजम, कि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, सोसाइटी में क्षत्रियों का कर्तव्य क्या है, वैश्यों का कर्तव्य क्या है इत्यादि इत्यादि सब बताते हैं। तो इसी के अंदर किंग प्राचीनवरी जो है वो वैदिक रिचुअल्स कर रहे थे, जब वो एनिमल को मारने के लिए जा रहे थे तो फिर नारद मुनि उनको, अथवा नारद मुनि उनको मना कर रहे थे, नहीं नहीं ये मारना ठीक नहीं है, प्राचीनवरी उससे समझ के कि क्यों गायों को, प्राचीनवरी अंडरस्टूड नारद प्रॉपरली एंड देन लेफ्ट द किंगडम टू परफॉर्म ऑस्ट्रिटीज। तो नारद मुनि आउट ऑफ कंपैशन उन्होंने कहा कि पशुओं को मारना नहीं चाहिए। तो क्यों पशुओं को मारना नहीं चाहिए इसके ऊपर बहुत कुछ चीज है जो हमारे साइंटिस्ट लोग भी उसको रिसर्च करके फील्ड में देखे हैं। जैसे जब भारत स्वाधीन हुआ, जब भारत स्वाधीन हुआ तो फिर उसी समय महात्मा गांधी दिल्ली छोड़ करके एक चले गए थे गांव पर जो बंगाल में होता है, जिसका गांव का नाम है नोआखली, वहां पर जाकर के रोए थे। तो फिर वहां पर इंग्लिश जर्नलिस्ट जो थे ढूंढ रहे थे कहां गए कहां गए, तो फिर उनके जाकर को पूछे, जब पूछे उनको कि आप यहां क्या कर रहे हैं, भारत तो स्वाधीन हो गया, तो फिर वो दुखी थे। तो दुखी जब हुए तो फिर उनको पूछा गया क्या हो गया, अब आपकी क्या प्लानिंग है? तो फिर उन्होंने कहा कि अभी मैं जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया 54,735 एक्ट है उसी को मैं नष्ट करना चाहता हूं, एक कलम के नोक पर उसी को मैं नष्ट करना चाहता हूं। 54,735 जो नियम बनाए थे उनके शासन काल में उसको मैं नष्ट करना चाहता हूं। तो फिर उन्होंने जब ऐसा कहा तो फिर हम लोगों को सोचने थे, इतने सारा नियम बनाया गया था इसके अंदर, जैसे इंडियन लैंड एक्विजिशन एक्ट, इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट इत्यादि कई सारे नियम बना करके उन्होंने गए थे। इनकम टैक्स के अंदर एक बहुत सुंदरी टैक्स कैसे बना था, बहुत सुंदरी हिस्ट्री है। उसी समय भारत के लोग बहुत डोनेशन देते थे मंदिर को, डोनेशन बहुत सारा देते थे, डोनेशन इतना डोनेशन आ रहा है बड़े बड़े लोगों से, उसको देख करके अंग्रेजों लोग, इन लोगों के पास इतना धन कहां से आया, इतना धन कहां से आया, इसके कारण कहे कि इन लोगों को जरूर टैक्स लगाना चाहिए। उसी दिन से इनकम टैक्स शुरू हो गया, वेल्थ टैक्स भी लगा दिए। तो फिर ऐसे इट्यक्स भी उनके द्वारा ही लगाया गया था। तो ये एक्ट के अंदर उसी दिन में उसी समय से उन्होंने ये एनिमल को मारने के लिए एक एक्ट बनाए थे, उन्हीं के द्वारा बनाया गया ये एक्ट है। जो उसी एक्ट को अब आज हम लोग मान करके चल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कई सारा अदालत में बहस भी हो चुका है, जिसको सुधारना चाहते हैं कई संस्थाएं, ये संगठन है इस भारतवर्ष में, जो इसको सुधारना चाहते हैं कि गायों की हत्या नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी को, उसी कानून को अभी तक भी अदालत में यद्यपि मान्यता दे दिया गया है, गायों का संवर्धन होना चाहिए, गायों का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से अथवा हमारा संविधान में, भारतवर्ष में कोई ऐसा गायों को हत्या करने का नियम नहीं, एक्ट नहीं बनाया गया है। यदि भी कई स्टेट पर इसको बनाया गया है, लेकिन उसको फील्ड में अच्छी तरह से उसको लोग अथवा गवर्नमेंट की तरफ से अमल नहीं किया जा रहा है। तो ये गायों का जो कटता है तो फायदा क्या होता है, तो इसको देखना चाहिए। यहां पर आप लोगों को पता होगा मुंबई में एक स्थान है जहां पर बहुत गायों को मारा जाता है, देवनार नामक एक स्थान है जहां पर कई सारा गायों को मारा जाता है, कम से कम 10,000 रात को सोते ही, सुबह उठते ही 10,000 गाय कट जाते हैं, इतना सारा गाय कट जाते हैं। तो फिर ये लोगों को क्या मिलता है इतने सारा गायों को काट करके, इतना सारा कष्ट दे करके। तो फिर अगर ये कलकत्ता में देखेंगे, एक स्थान है मुरी गांव, वहां पर भी रात को 15,000 गाय कट जाते हैं, सुबह उठते एक दिन में 15। ऐसे ही आप देखेंगे तो फिर कई सारा गाय पूरे भारत वर्ष में कट जाते हैं। और पूरा देखा गया है कि पूरे होल वर्ल्ड में 28 करोड़ 50 लाख मेट्रिक टन मांस का उत्पादन होता है, और उसका 2.5% है जो भारत में कटता है मांस। तो इतना सारा मांस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये जो गायों को इतना कटा जा रहा है, इसी का प्रभाव वास्तव में पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर। पता है इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है, ये एक्ट कैसे बना, इस संसार में कैसे, ये स्पेशल भारतवर्ष में कैसे इसका शुरू हुआ, इसके ऊपर बहुत बड़ा हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री में बना है, मतलब कैसे शुरू हुआ है। आपको पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से फंक्शन कर रहे थे इंडिया में, तो फिर उसी समय रॉबर्ट क्लाइव नामक एक आदमी आया था पहले, तो उन्होंने पहले ये एनिमल क्रुएल्टी एक्ट बनाया था, एक जो मारना है गायों को काटने के लिए। तो उसी समय उन्होंने ही पहला स्लॉटर हाउस कसाई खाना खोला था, कहां पर ना, कलकत्ता में मुरी गांव में। तो उसी समय सन 1760 में, उसी समय 3,000 से 4,000 गाय कटते थे रोजाना, जबकि आज के दिन में 15,000 से ज्यादा गाय कटते हैं रोजाना वहां पर। तो ये जो होते हैं, इतना गायों का कत्ल होता है वहां पर, तो फिर इन्होंने पहले ही शुरू किया था गायों को काटना। तो फिर जब इन्होंने ऐसा किया, तो फिर उनके पिताजी ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, तो फिर उन्होंने, इससे दो ही फायदा है हम लोगों को ना, क्या, एक तो गाय मिल जाता है, गाय का मांस फ्री में मिल जाता है खाने के लिए, और एक होता है कि इसी संसार में, भारतवर्ष में जो बेसिक चीज है, सेंट्रलाइज करते हैं गांव को, गायों को आधारित करके सारे काम करते हैं, उद्योगपति उद्योग चलाते हैं, उद्योग चलाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट ऑक्यूपेशन अथवा इंडस्ट्री चलता है, और कृषि भी चलता है, ये दोनों चलता है, पूरा आधारित है इस संसार में, भारतवर्ष में कृषि के ऊपर। उसी समय भारत स्वाधीन होने से पहले कृषि से हमारा इनकम 60% हो रहा था, अभी यहां से हम लोगों को सिस्टम इंडिपेंडेंट के बाद हमको इनकम कृषि से 40% हो रहा है, अथवा उससे भी कम हो रहा है धीरे धीरे ग्रेजुअली। तो ये जो उनके पिताजी ने जब ये सब पूछा, तो फिर उन्होंने कहा ये हमारा दो फायदा है, तो अगर गायों को हम मार देते हैं तो फिर हमको इससे ज्यादा फायदा है, तो फिर इसका अदालत में, तो फिर उन्होंने चले गए लंदन, लंदन में हाउस ऑफ कॉमन में उन्होंने एक संसद में वहां पर एक भाषण देते साढ़े तीन घंटे का। वो साढ़े तीन घंटे के भाषण में उन्होंने कई सारा चीज रिवील किए थे। तो फिर उन्होंने कहा अगर इंडियन की इकोनॉमी को, भारत की इकोनॉमी को अगर आर्थिक रूप से उसको दुर्बल करना चाहते हैं तो फिर उसी को कम से कम हम लोगों को उनके गायों को मारना चाहिए। उन्होंने कहा ये क्यों सोचते हो, ऐसा क्यों सोचते हो? सांसद विलियम विल्वर फोर्स ने उनको पूछा कि ऐसा क्यों सोचते हो कि गायों को मारने से इंडियन इकोनॉमी जो है वो वीक हो जाएगा। तो उन्होंने उनको पूरा समझाया कि ये कैसे संभव है, हाउ इट इज पॉसिबल, इंडियन इकोनॉमी कैसे वीक हो सकता है। उन्होंने कहा कि गायों से, गायों के गोबर से खाद बनता है, वो खाद को यूटिलाइज किया जाता है कृषियों में है? तो कृषियों में यूटिलाइज करके लोग धान उत्पादन करते हैं इत्यादि इत्यादि। अगर गायों को मार दिया जाएगा तो फिर खाद नहीं मिलेगा। और ये सारा चीज उन्होंने प्रोडक्शन के गोबर गैस प्लांट इत्यादि इत्यादि करते हैं, इंडस्ट्री में लगता है। अगर गायों को मार दिया जाएगा तो फिर कपास का कल्टीवेशन एग्रीकल्चर ठीक से नहीं होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी ठीक से नहीं चलेगा। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं चलने से तो फिर उनको क्या होता है ना, चार प्रॉब्लम इस भारतवर्ष में उत्पन्न होगा। एक तो प्रोडक्शन नहीं होगा कुछ, कुछ ये नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। फिर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा ना, इन लोगों का कमाई नहीं होगा और एंगेजमेंट इनको नहीं मिलेगा और लोग गरीब बन जाएंगे। और उनका जो मजबूत स्टैंडर्ड है और गायों को जो माँ बना करके रखे हैं वो सब चीज टूट जाएगा। ये वास्तव में इसके ऊपर यही सत्यता है, जिस सत्यता को लेकर के उन्होंने पूरे संसद में वर्णन किया। इसी से हम लोगों के ये सारा फायदा है और यहाँ पर कानून बनाया जा सकता है। तो इसी के कारण उन्होंने कानून बनाया, बना करके पूरा समाज को इसी तरह से कंट्रोल करने के प्रयास किया और उन्होंने सक्सेस भी प्राप्त किए। तो इसी के कारण उनको यही परमिशन मिला था वहां से, हाउस ऑफ कॉमन से वहां पर, यहां पर आकर के उन्होंने वो कानून को लागू करवाया। तो ही फायदा होता है उन लोगों का जो गायों को मारने से। तो लेकिन इसी को, इसी कानून को बंद कैसे, इसी जो गोहत्या के हो रहा है इससे हमको बहुत सारा लॉस हो रहा है, इसी को कैसे बंद कर दिया जाए जिससे हमारे जीवन में बहुत फायदा आ सकता है, हमारे जीवन पर अभी नहीं हर व्यक्ति जीवन में। ऐसा तो देखा गया है कि गायों को कत्ल करते करते प्रदूषण हो गए वातावरण, ये एक कारण है। एक प्रोटो क्यूटो प्रोटोकॉल नामक एक एग्रीमेंट हुआ था, क्यूटो नामक एक कंट्री था जहां पर एक प्रोटोकॉल हुआ था। 186 कंट्री से जाकर के कई लोग एक जगह पर एकत्रित हुए थे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर इत्यादि सब जाकर के एक जगह पर एकत्रित हुए थे। तो वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम इस देश को, इसी पृथ्वी को, इसी वर्ल्ड को कैसे बचाएं, वहां पर वो एग्रीमेंट होता। उसी से उनको एक खबर मिला कि कैसे ये जगत कई सारा दूषित हो रहा है अथवा पॉल्यूशन हो रहा है अथवा हीट बढ़ रहा है। 100 साल पहले जो हीट था, तापमान था, अभी जो तापमान है उसके 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। और उन्होंने रिसर्च करके देखे कि 2050 तक तापमान अगर 4 डिग्री भी बढ़ जाता है ज्यादा, तो फिर उत्तर पूर्व में जितना बर्फ जमा है अथवा हिमालय में जितना बर्फ जमा है तो फिर वह सारा पिघलेगा और वो पानी इतना आएगा, समुद्र में मिलेगा, नदी बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमारे 2 लाख से ज्यादा जो गांव बसा है समुद्र के किनारे वो सारा डूब जाएगा। और कई सारे ऐसा ही रिसर्च हुआ था जिसके कारण। और उसी को अगर हम बंद करें तो फिर इसका बताया गया कि कई कारण है ये तापमान बढ़ने का, उसके पीछे एक ही है पॉल्यूशन और एक है कि ये मांस को लोग बहुत कंजप्शन करते हैं। अगर ये मांस खाना बंद कर दिया जाए सोसाइटी में 2050 तक, तो फिर इसको बचाया जा सकता है, इस सोसाइटी को अच्छी तरीके से। तो इसी के कारण उन्होंने कई सारा प्लानिंग किए थे कैसे इसको अमल किया जाए, परंतु अभी तक यद्यपि नहीं हुआ है लेकिन ये सारा प्लानिंग उनको था। लेकिन इसके ऊपर कई सारा स्टेट में बहस हो चुका है अदालत में। एक बार 1998 और 1999 में एक गुजरात में एक भैंस कोर्ट में केस आया था इसी गायों को गो कानून के बनाने के लिए, गायों का कानून बनाने के लिए। उस गायों का कानून के ऊपर एक जब आया था तो फिर उसी के ऊपर बहस हुआ आपस में, कसाई की तरफ एक ग्रुप थे और गुजरात सरकार एक तरफ ग्रुप था। तो कसाईया वहां हार गए, सरकार वहां जीत गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो कसाई जब हार गए तो फिर उनके ही छह अब चलते हैं इधर किधर ना, सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट तक आ गया कि सुप्रीम कोर्ट में अब कैसा करना है। तो उन्होंने केस सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। तो फिर वहां पर केस तो उन्होंने जीत लिए किधर ना गुजरात में, लेकिन केस इधर भी आ गया। और उन लोगों के पास बहुत पैसा है, किन के पास, कसाईयों वालों के पास बहुत पैसा है। तो वो जो पैसा, इतना पैसा उनके पास है, उनकी तरफ से जो वकील लड़ते थे एक एक दिन में 25 से ज्यादा लाख रुपए, जैसे कपिल सिब्बल, जेठमलानी, बड़े बड़े लॉयर जो थे वो सारे एक एक दिन में 25-25 लाख रुपए लिए थे, ले रहे थे। हालांकि ये जो तीन टीम एकत्रित हुए थे, एक तो अहिंसा आर्मी ट्रस्ट, एक तो भारतीय कृषि गोरक्षा सेवा संघ और एक होता है गुजरात सरकार, ये तीनों टीम इकट्ठा हुए थे इन लोगों के साथ फाइटिंग करने के लिए। तो इन लोगों के साथ जब फाइटिंग किए तो फिर वहां पर इन लोगों ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम बहस खुद ही करेंगे। तो अदालत उनको ही परमिशन दे दे, ठीक है आप लोग बहस खुद कर सकते हो। तो फिर प्रॉब्लम यही है कि क्यों वास्तव में कई लोग चाहते हैं। तो फिर वहां बहस हुआ, वास्तव में कई सारा बहस हुआ, ये केस 7 साल तक चला। 2005 में डॉक्टर आर सी लाहोटी चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जाकर के इसके ऊपर जजमेंट दिए। परंतु इसके ऊपर जो बहस हुआ बहुत सुंदर सा बहस हुआ। कसाईया वो कहते थे कि ये जो गायों को काटना ये हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। क्यों ना, क्योंकि अगर गायों को नहीं काटेंगे तो हम खा ही नहीं सकते, बचेंगे कैसे, हमारे बाल बच्चे नहीं बच सकते, तो हम करेंगे क्या, तुम यही वैसे था। तो फिर इन लोगों ने कहा कि हमारा जेब भी काटना हमारा भी मौलिक अधिकार है, जेब काटेंगे, चोरी करेंगे, ये वो करेंगे, अपोजिशन वाला कहने लगे, तो अगर ये करेंगे हम तो फिर हमारा भी मौलिक अधिकार है। तो फिर अगर ये कहा जाएगा तो फिर ये जो सारे एक्ट बनाया गया तो फिर उसका मतलब ही क्या। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको यही जो आर्गूमेंट था उनको भी नकार दिया कि नहीं, ये जो तुम कह रहे हो गायों को काटना तुम्हारा मौलिक अधिकार, ये ठीक नहीं है। फिर उन्होंने और एक तर्क किया था कि ये धार्मिक अधिकार है गायों को काटना, उन्होंने कहा ना धार्मिक अधिकार कैसे ही है गायों को काटना, उन्होंने एक ही है। तो फिर जब इतना सारा चीज कहे धार्मिक अधिकार है, तो फिर उन्होंने कहा कि मोहम्मद शाह खुद कहे हैं कि गायों का पूजा होना चाहिए, अगर कोई गायों को काट करके मांस को खा रहा है तो फिर उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, ऐसा खुद वो कहे हैं। लेकिन ये जो कहे कि हमारे धार्मिक अधिकार है, तो फिर उनको अदालत की तरफ से पूछा गया धर्म कहां पर ऐसा लिखा गया है कि आप कह रहे हो कि ये धार्मिक अधिकार है। तो फिर उनको जब पूछा गया धर्म कहां पर ऐसा लिखा गया है अथवा कहां से सुने हो तुम लोग, तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे उलेमा कहते हैं, उलेमा, उलेमा का अर्थ है पुजारी, हमारे पुजारी लोग कहते हैं ना, उनको उलेमा को बुलाओ यहां पर, देखते हैं हम उनको पूछते हैं। तो फिर उनको बुलाया गया सर उलेमा को, तो उलेमा ने आकर के कहे कि हमारे सीनियर्स कहते हैं ये कि गाय को काटना हमारा धार्मिक अधिकार है। तो फिर उनको भी बुलाया गया, तो फिर उनको बुलाया गया तो फिर उन्होंने कहा कि हमने तो कहीं पर नहीं पढ़ा है, कहीं पर लिखा भी नहीं गया है, कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, सियासत में नहीं है, किधर भी नहीं है, तो फिर आप कहां से कह रहे हो ये सब। अदालत ने खुद पूछे उनको, जब पूछे तो फिर उन्होंने कहा कि मक्का मदीना से रहने वाले लोग हमको पहले कहते, इसी के कारण उनसे सुन करके हम ये प्रचार कर रहे हैं यहां पर। तो उनको बोला मक्का मदीना से हम उनको पूछना चाहते, जो खर्चा होगा हम वो देंगे। तो फिर उनको बुलाने के लिए गए, तो फिर वो आए जब, तो फिर उन्होंने कहा कि हम भी ये सुने थे, तो श्रवण का फल है। तो तो हम भी ये सुने थे। तो जब हम भी ये सुने थे उन्होंने ऐसा कहा, तो फिर अदालत ने उनको कहा कि तुम्हारी इसी आधार के ऊपर हम इसको, ये तर्क जो किया अपने धार्मिक अधिकार है इसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि मोहम्मद उन्होंने खुद कहे हैं कुरान में गायों का अगर कत्ल होता है तो फिर उसको जो जीव काटता है उसको नर्क में भी जावा नहीं मिलेगा। आप लोग अगर स्लॉटर हाउस जाओगे तो फिर पता चलेगा कितना कष्ट दिया जाता है गायों को। पहले कई दिन तक उनको खाना पीना नहीं दिया जाता है, कई दिन तक। क्यों? उसके पीछे पता है, क्योंकि गाय से जो मांस निकलता है वो मांस अगर लाल बन करके रहता है बहुत दिन तक चलता नहीं, इसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो पाता है। इसके कारण उनको खाना कम कर दिया जाता है ताकि मांस ज्यादा दिन तक रह सके, प्रिजर्व होकर के रखा जा सके उसको। और फिर जब खाना पीना उसको बंद कर दिया जाता है फिर उसका अंत में मरने के समय पर उसके ऊपर गर्म पानी छिटकते हैं, सक देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं गायों को। इसी के कारण मोहम्मद खुद कहे उनको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा, ऐसा कहे हैं वो। इतना कष्ट देते हैं गायों को। तो ऐसा ही हुआ, जब ये बहस चल रहा था तो फिर उन्होंने कहा यह धार्मिक अधिकार हो ही नहीं सकता है, असंभव है। तो फिर उसके बाद उन्होंने और एक आर्गुमेंट तैयार किया, उन्होंने कहा कि हमारा जीविका का अधिकार है, मौलिक अधिकार से फिर जीविका तक आ गए, अर्थात कि अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो फिर हम चल नहीं सकते हैं, हमारा बाल बच्चे मर जाएंगे, सब कुछ मर जाएंगे, हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, जीविका हमारा ही है, रोजाना रोटी हम इससे खाते पीते रहते हैं, सब कुछ करते हैं। तो फिर जो ये तीन टीम थे उन तीन टीम ने वास्तविक बहुत कुछ कि आप गायों का काटना बंद कर दो, हम आपकी देखभाल करेंगे, हम आपको एंगेजमेंट देंगे। उन्होंने कहा एक गायों को खरीद करके जब आप काटते हो आपको कितना लाभ होता है, गायों को खरीदते हो मैक्सिमम 500-600 रुपए दे करके खरीद रहे होगे और उसको काट करके हड्डी वहां से जितना बेच रहे हो कम से कम 12,000 से 15,000 रुपए कमा रहे होगे मैक्सिमम। तो फिर उन्होंने स्वीकार किया, सत्य है, उन्होंने सत्य ही उगाल रहे थे अदालत के सामने। जब इतना सब कहा तो फिर उन्होंने ग्रहण किए। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए गायों को मारने से आपको 12,000-15,000 एक गाय को मारने से आपको मिलता है, लेकिन मैं कहता हूं अगर एक गाय को रखोगे तो फिर आपको 2,00,000 रुपए मिलेगा महीना पर मंथ। उन्होंने ऐसा कैलकुलेशन करके दिखाया। तो फिर उन्होंने कहा कैसे, उन्होंने कहा देखो अगर एक गाय 1 किलो का गोबर देता है, 1 किलो का गोबर देता है तो फिर वो गोबर से खाद बनता है, 33 किलो की खाद बनता है, और 33 किलो के खाद से 1 किलो का खाद 6 रुपए का होता है, और 33 किलो के खाद का लक्षण का 200 रुपए होता है। तो 200 रुपए एक गाय 1 किलो गोबर से होता है। अगर ऐसे ही गाय 10 किलो गोबर दे अथवा कुछ ज्यादा ही दे दिन में तो फिर आपका कम से कम 2,000 रुपए कमाई हो जाता है। फिर वो 2,000 रुपए अगर महीने में बहुत कुछ हो जाता है, ऐसे उन्होंने कैलकुलेशन करके कहते 2,00,000 रुपए आपका कमाई होता है। तो फिर 2,00,000 रुपए जब कहा तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर आर्गुमेंट कर दिया कि ये तो एग्जैजरेशन है, अथवा ये जो आप कह रहे ये प्रामाणिक नहीं है, उसको हमको दिखाना पड़ेगा आपको। तो मैंने ठीक है गाय को गोबर को लेकर के आईसीआर साइंटिस्ट के लोगों के अंदर टेस्ट करवाइए, देखते हैं उसमें मिलता है या नहीं। तो फिर उन्होंने टेस्ट करवाया, उन्होंने भेजा, कई महीने तक आईसीआर साइंटिस्ट लोग उनको रिपोर्ट भेजवाए, उन्होंने भेजा है रिपोर्ट कि 18 प्रकार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स गाय के गोबर में मिलता है, 18 टाइप्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट पाया जाता है उसके अंदर, नाइट्रोजन, पोटासियम, कैल्शियम, माइक्रोजन और सिलिकन, आयरन इत्यादि इत्यादि 18 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है गाय के गोबर में। कि साधारण गोबर में इवन जर्सी गाय के गोबर हो अथवा भैंस हो अथवा जिसके हो उनके अंदर इतना न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, देसी गाय में जितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है उनके अंदर 3 न्यूट्रिएंट्स सब ले, एक तो कैल्शियम, पोटासियम और एक नाइट्रोजन, साधारण रूप से 3। गाय देसी गाय के जो गोबर से 5 गुना ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जिससे हम लोगों को ज्यादा कुछ चीज प्राप्त होता है, इतना गाय का गोबर में शक्ति होता है। तो फिर जब उन्होंने रिपोर्ट दिया तो फिर जाकर के चीफ जस्टिस आरसी लाहौट ने उसको उनको भरोसा किया। भरोसा करते हुए उन्होंने माना इनकी बात को, और उन्होंने एक चीज बताया कि अगर गायों को काटना बंद कर दोगे तो फिर आप लोगों को और कई सारे एंगेजमेंट मिल जाएगा, और कई सारे एंगेजमेंट मिल जाएगा, गायों को पालन करोगे तो फिर आपका करोड़ रुपए का कमाई करोगे। उन्होंने हिसाब लगा था कि 40 लाख रुपए आप कमा सकते हैं पर ईयर, उन्होंने ऐसा कह करके। उन्होंने कहा कि जब आईसीएस साइंटिस्ट लोग रिपोर्ट भेजे कि अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जरिए एक खाद का रेट होता है 22, एक किलो खाद का रेट होता है 22 रुपए, अगर वो सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसी को अगर ले तो फिर इनका वैल्यू इतना हो सकता है। बस इन्होंने तो जनरल रेट पकड़ा है 6 रुपए का। तो ऐसे ही तो फिर उन्होंने जब इतना सारा कुछ तथ्य प्रस्तुत किए अदालत के सामने, तो फिर उन्होंने और एक चीज बहुत अच्छा प्रस्तुत किए थे कि जो गोबर गैस प्लांट होता है, गायों के गोबर से बनता है, उसी से कई सारा चीज बन सकता है। उन्होंने कहा गाय के गोबर के गैस से गाड़ी भी चल सकता है, अगर गाय के गोबर के गैस में गाड़ी चल सकता है तो फिर हम पेट्रोलियम और गैस इत्यादि सब जो प्रोडक्शन हो रहा है जिसके कारण वायु दूषित हो रहा है उसको भी बचाया जा सकता है गोबर गैस से अगर हम गाड़ी चलावे। तो फिर उन्होंने को जज ने ग्रहण नहीं किया, गोबर गैस से गाड़ी कैसे चल सकता है। तो फिर उन्हीं को प्रमाणित करने के लिए 3 महीना तक गोबर गैस प्लांट उसी जज के गाड़ी में फिट कर दिया गया। तो उन्होंने 3 महीना तक उसी गाड़ी को चलाया, फिर जाकर के विश्वास किया कि गोबर के गैस से गाड़ी चल सकता है। तो फिर ऐसा जब ग्रहण किए गोबर के गैस से गाड़ी चल सकता है, तो फिर जाकर के उन्होंने ग्रहण किया इसको कि नहीं, ये वास्तविक जो लोग गुजरात सरकार अथवा अहिंसा आर्मी ट्रस्ट अथवा ये जो कृषि गोरक्षा सेवा संघ होते हैं जो आर्गुमेंट करते हैं उसके कुछ आधार है। तो फिर उन्होंने कहा उन लोगों को, अब आपको क्या कहना है। ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप कमाओगे 2 लाख रुपए और ऐसे ही 40 लाख रुपए आपको हो जाता है साल भर में, तो फिर आप क्यों गोहत्या करते हो, उसको बंद करो। तो फिर उसी दिन से अक्टूबर 25 2005 को, अथवा 2008 को, याद नहीं आ रहा है ठीक से, शायद 2005 को उन्होंने एक संविधान कोर्ट में एक अनाउंसमेंट, उन्होंने चीफ जस्टिस आरसी लाहौट ने एक सुनाई किए थे। वो सुनाई ऐसा था कि उन्होंने कहा कि गायों को कत्ल करना एक संवैधानिक पाप है, इसी के कारण गायों को संरक्षण होना चाहिए और गायों का संवर्धन होना चाहिए। उन्होंने ये सुनवाई किए थे कोर्ट में। तो फिर उसी दिन से जब ये कसाई लोग हार गए, तो फिर उनके दिमाग में जगह हमारा बिजनेस क्या होगा, व्यापार क्या होगा। इसी के कारण उन्होंने फिर उनको कहा, उन्होंने क्या किया, ड्रम कार्ड खेला उन्होंने। वो ड्रम कार्ड क्या था, उन्होंने सारे कसाईयों को भारतवर्ष में एकत्रित करके, उनको इकट्ठा करके क्या किए ना, उनसे सिग्नेचर ला करके जो पॉलिटिकल लीडर थे उनको धमकाने लगे, कहने लगे कि हम आपको वोट नहीं देंगे, हमारी बात को सुनो, ये धंधा चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट की बहस चल रहा है हमारे और इनके बीच। तो फिर जब उनको कह दिया, तो फिर ये जो गुजरात सरकार और इनके सारे ट्रस्ट के सेवक संघ सर थे, कृषि गोरक्षा सेवक संघ, तो फिर उन्होंने जाकर के कहा कि अगर तुम उनको सपोर्ट करोगे तो फिर इतना याद रखना कि भारतवर्ष में हम तुमको रहने नहीं देंगे। ना वो कैसे, ना तुम जितने सारे नेता हो, तुम्हारे कहां कहां पर कसाई खाना चल रहा है वो हमको पता है। आंध्र प्रदेश में जितना सारा है कसाई खाना, ऑलमोस्ट 80% वो चलता है इन्हीं के ही आशीर्वाद से, नेताओं के, कर्नाटक में इत्यादि इत्यादि। तो फिर जब इसे इन्होंने ऐसा ही धमकी दिया, तो फिर उन्होंने कहा कि अब तो बंद करना है, इनको बीचों बीच हमको नहीं पढ़ना है। तो फिर वो नेता लोग भी भाग गए। उसी दिन से ही आप लोगों को पता होगा कितना सारा ये नियम चलता था, गायों को कानून बनाने के लिए कई बार प्रयास किया गया, नेहरू के समय पर एक बार अदालत में संविधान में हम लोगों को एक बिल पास करवाना था उसी समय, तो फिर बिल जब पास करवाना था कि गायों को कानून बनना चाहिए, गायों को हत्या हो रहा है, गांधी जी ऐसा कहें, तो नेहरू जी खुद कहने लगे कि अगर गायों को मांस बेचना बंद कर दो उधर पैसा कम हो जाए, इसके कारण मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो कानून बनते बनते वहां पर बंद हो गया। एक बार इंदिरा गांधी के समय पर भी ऐसा ही हुआ था। इसी मुंबई के कतलखाने को बंद करवाने के लिए अथवा यहां पर एक संत रहते थे जिसका नाम था विनोबा भावे, उन्होंने ये चीज किया था कि इंदिरा गांधी को निवेदन किए थे कि गायों को ये कतलखाना बंद कर दीजिए, गायों का कानून बनना चाहिए इत्यादि इत्यादि सब कुछ कहे थे। वास्तविक इंदिरा गांधी ने उनको इधर उधर कह करके बहुत उसको टाल रहे थे, अंत में उन्होंने मना किया। तो फिर ये सारे संत मिलकर के संविधान के सामने पार्लियामेंट के सामने एक बहुत बड़ा आंदोलन की। उसी दिन गोपाष्टमी का दिन ही था जिस दिन गायों का पूजा होता है, सब इकट्ठा बैठ करके आंदोलन किए थे। तो फिर ऐसे कई संत को मार दिया गया था गोली से आंदोलन करें। अब इंदिरा गांधी जिस दिन मरा गोली से, उसी दिन भी ही ये था, गोपाष्टमी का दिन था। तो फिर ऐसा ही समय अभिशाप पड़ता है, संत लोग जो गायों को जो मारता है उनका अभिशाप पड़ता है। इसी के कारण हम लोगों को समझना चाहिए कि गायों का कत्ल नहीं। अभी अभी कुछ साल पहले पार्लियामेंट के अंदर एक और इसी गायों का कानून बनाने के लिए ही प्रयास किया गया था। सारे बिल पास होने में सारे सांसद एकत्रित हुए थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन एक ही थे सुश्री ममता बनर्जी ने, उन्होंने भी ऐसा ही आर्गूमेंट कर दिया कि गायों को काट करके खाना हमारा मौलिक अधिकार है। तो फिर बिल पास होते होते फिसल गया, जो आज तक संविधान में ये नीति बन नहीं सका। तो ऐसे ही हम लोग अगर इसी को बंद करवावे तो फिर जरूर जाकर के हम लोगों के जीवन में बहुत सारा फायदा हो सकता है। दिल्ली में एक प्रोफेसर थे, याद नहीं आ रहा उनका नाम, उन्होंने 12 साल रिसर्च किया गायों को जिस स्थान पर मार दिया जाता है, कत्ल किया जाता है, उसी स्थान का वातावरण कैसा होता है देख रहे थे जाकर के एटमोस्फियर में, एयर वाइब्रेशन में क्या क्या शक रहता है। तो उन्होंने आकर के बहुत बड़ा रिपोर्ट दिया गया था। तो ऐसे ही तो गायों को कानून बनना चाहिए, कत्ल नहीं होना चाहिए, इसी से वातावरण प्रसुद्ध है। गायों के पता नहीं कितने कितने फायदा होता है गायों के गोबर से, गोमूत्र से, कृषि में भी, कृषि के फील्ड में भी। दूध को छोड़ दीजिए, खाली गोबर और गोमूत्र ले लिया जाए, इससे बहुत सारा फायदा होता है। गोबर को बिल्कुल, गाय तो दूध देती है बहुत रेयरली, बहुत कम दूध देती है साल में। जब बच्चा पैदा करते हैं तो फिर कुछ महीने तक देती है, लेकिन गोबर और मूत्र जो होते हैं उसी से कई सारा ये बनता है, दवाई बनता है। तो फिर ऐसे ही गोमूत्र और जो कृषि होता है गायों के गोबर से, वो इसका भी बहुत ये है। एक बार एक व्यक्ति, उसका ब्लड टेस्ट हो रहा था, तो ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में आ गया डीडीए निकला, डीडीटी ब्लड में। डीडीटी समझते हैं आप लोग, जो जब कृषि जो लोग करते हैं, खेती करते हैं, वो खेती में डीडीटी छिटकते हैं कीड़ों को मारने के लिए, तो फिर वो खून में निकल रहा है, अब खेती से जाकर खून में निकल रहा है डीडीटी रिपोर्ट। तो फिर इतना उसका प्रभाव होता है कि अर्न के अंदर प्रवेश करके, अर्न को इतना बॉयल करने के बाद उसका असर भी नहीं जाता है, फिर वो जाकर के ब्लड में, खून में खाने के बाद सार बन करके, पाचक शक्ति जो होता है वहां पर रस बन करके खून बन जाता है डीडीटी। तो इतना ये इसका असर होता है गायों का, ये जो यूरिया पोटाश डीडीटी इत्यादि इत्यादि सब खेती में डालते हैं। तो फिर वो व्यक्ति जब देखा मेरे खून में डीडीटी निकल रहा है, तो फिर उन्होंने जाकर के अपने पिताजी को कहा चलो खेती को थोड़ा करेक्शन करना है खेती। उसी के कारण उसी दिन से उन्होंने डीडीटी डालना बंद कर दिया, यूरिया इत्यादि इत्यादि जितना सारा खेती को अच्छे बनाने के लिए डाला जा रहा था गाय के गोबर के अलावा, उसको सब बंद कर दिया। सिर्फ गाय का गोबर, मूत्र और गुड़ और पानी, उसको घुला करके जमीन में डालते थे ताकि अच्छी तरह से खेती हो सके, धान पैदा हो सके। तो उन्होंने किया, 10 साल के अंदर एक एकड़ के जमीन से कई सारा उनको कई क्विंटल का, 10 क्विंटल से ज्यादा धान उत्पादन हुआ। तमिलनाडु में अरकट जिला में किसान होता है, अरकट जिला में, वो अरकट जिला में किसान होता है, जिस किसान ने एक साल में एक एकड़ के जमीन से 56 क्विंटल का धान कमाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से उनको अवार्ड दिया गया था, सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड दिया गया था और उनका DD1 पर कम से कम आधा घंटा का इंटरव्यू आया था, देख सकते हैं। कर्नाटक में एक ऐसा है, अब्दुल रलफ एक आदमी है, वो पढ़ाई कर रहा था, 8वीं का क्या फेल हो गया, 2-3 बार फेल हुआ, फेल होकर के उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ करके उन्होंने 15 एकड़ का जमीन का किराए पर ले गया, 15 एकड़ की जमीन, अरे 1 एकड़ की जमीन का 1000 रुपए दे रहा था। तो ऐसे ही हर साल वो 15,000 रुपए किराया देता था। तो 15,000 रुपए जब किराया देता था तो फिर 15,000 रुपए किराए के अंदर उन्होंने उसका नेट इनकम जो कमा रहा था वो हर साल 3,50,000 रुपए खेती से होता था और ग्रॉस इनकम 10 लाख रुपए होता था उसका, इतना कमा रहा था। तो उसी से अंदर उसी को और भी कई सारा चीज प्राप्त हो रहा था, वो कैलकुलेशन नहीं है। गायों के गोबर से और मूत्र से ज्वार उत्पन्न करके उन्होंने ज्वार का बीज बना रहा था, साइंटिस्ट जैसा काम कर रहा था, ज्वार का बीज बना करके उसको सेल कर रहा था पर मार्केट में, बहुत सारा कमाया कर, 8 क्लास पढ़ा नहीं लेकिन साइंटिस्ट जैसा काम कर रहा है। इमेजिन, कल्पना के बाहर है, साइंटिस्ट जैसा काम करता है। तो फिर उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कई व्यक्तियां ऐसे फोर्स के, यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे, कि भाई उनको डॉक्टरेट दो ना, ये तो 8वीं क्लास पास नहीं किया है, उसको डॉक्टरेट कैसे दें ना, पढ़ाई से क्या होता है, पढ़ाई से कुछ होता नहीं है, ये तो साइंटिस्ट का काम करके दिखाता है प्रैक्टिकल फील्ड में, उसको दो। तो फिर धारवाड यूनिवर्सिटी ने उसके ऊपर विचार किए, विचार करके उनको डॉक्टरेट दिया, डॉक्टरेट के बाद दिया गया उसको, उसका भी टीवी में ये सब चीज आया था। तो फिर 3 दिन के बाद कर्नाटक में 500 किसान आकर के तुरंत धारवाड यूनिवर्सिटी में इकट्ठा हो गए कि हम तो ये सब करते हैं, ज्वार का उत्पादन, ज्वार का बीज का उत्पादन करते हैं। तो फिर उन्होंने ऐसा कहा, तो फिर तुरंत धारवाड यूनिवर्सिटी 500 किसान को डॉक्टरेट का उपाधि दे दिए। तो ऐसा ही होता है कि कितना सारे लोग, सर्वश्रेष्ठ किसानों को डॉक्टरेट का उपाधि मिल जाता है। तो खेती कितना आवश्यक है हमारे जीवन में, खेती से कितना चीज उत्पन्न होता है, ये खेती से जहर जाकर के हमारे खून में निकल रहा है, इसी के कारण उसको संपूर्ण रूप से बंद करके अगर हम खेती करें, गायों का संरक्षण करें, संवर्धन करें, तो फिर हमारे जीवन में कई सारा चीज हो सकता है, वातावरण प्रदूषित जो हो रहा है वो बंद हो सकता है और सब कुछ हो सकता है। श्रील प्रभुपाद इसके ऊपर बहुत एम्फोसिस दिए हैं, कृषि गोरक्षा वाणिज्य विश्वकर्म स्वभाव जो संपूर्ण रूप से इनकम कर सकते हैं। तो यही कहना था कि कृषि को और खेत को कैसे हम बढ़ाया जाए और गोरक्षा को हम कैसे करें। गोरक्षा को ऐसे कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के नियम दिया है उसको अगर हम अपने जीवन में हर एक एक आदमी जाकर के, पूरा जनता भारतवर्ष के एकत्रित होकर के जाकर के संविधान में कह सकते हैं, तो फिर जरूर इसका समाधान हो सकता है। गवर्नमेंट सुनेगा, गवर्नमेंट तभी काम करता है जब तो उनको ऊपर प्रेशर डाला जाता है। ये पॉलिटिकल लोगों का स्वभाव है, राजनीतिक लोगों का, ये अपने स्वभाव से कभी नीचे नहीं आते, जब उनको ऊपर प्रेशर दिया जाता है तो फिर वो लोग जाकर के करते। थैंक यू सो मच। और किसका कुछ प्रश्न है अथवा कमेंट्स है तो फिर
हरे कृष्ण। जो आपने जो बताया ये जो हमारे 25,000 गाय जो कट रही है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, तो ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो यदि हम भक्त लोग प्रचार करें, और ये जो हम जो हमें जो तकलीफें हो रही है गायों को कटने से, तो उसका सॉल्यूशन एक ही है कि हम लोग जो है गाय की जो प्रोडक्ट है काउ प्रोडक्ट उसको हम लोग यूज करें।
या
कहीं भी तो हम प्रचार करते हैं, जैसे तो जो भी प्रचार करे तो साथ साथ में उन्हें गौ रक्षा के बारे में गायों के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उनको जानकारी देनी चाहिए। तो हमारे इस तरह यदि हम समाज में गायों के प्रोडक्ट को यूज करना लोगों को बताए, क्योंकि हम हमारी मूवमेंट जो प्रीचिंग मूवमेंट है तो हम ये सब छोड़ के खेतीबाड़ी नहीं कर सकते, ये भी एक प्रैक्टिकल है। एज
हमारे फार्म कम्युनिटी से प्रभुपाद ने कई सारा जगह पर बनाए, प्रभुपाद जी की इंटेंशन भी था कि गायों का हत्या नहीं होना चाहिए। हमारी रिसर्च में ये चीज घटा था, एक आदमी डोनेशन देने के लिए आया था, तो फिर प्रभुपाद जी ने देखा कि कई सारा वो नेता का स्लॉटर हाउसेस पूरा मॉरीशस में है, तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम आपसे धन नहीं लेंगे। तो फिर प्रभुपाद जी की इच्छा था कि हो ये फार्मिंग वगैरह इत्यादि इत्यादि हो। इसी से यद्यपि हम लोग ये सारा चीज प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो संस्था इसके ऊपर लगे हैं तो उनको सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे क्या होता है ना, गो माता की गो ब्रह्मण हिताय च, गायों की सेवा होता है तो फिर कृष्ण की सेवा होता है, क्योंकि नंद महाराज खूब सेवा करते थे, भगवान कृष्ण राम सब सेवा करते थे गायों का, इतना गाय रखे थे जो आप पता होगा कि गायों को खड़ाऊ पहन करके जाने के लिए भी ये फोर्स कर रहे थे नंद महाराज को, जसोदा मैया को, कौन कृष्ण, कि मैं नंगे पैर जाऊंगा, इतना टेक केयर करते थे गायों के लिए। फिर आज हम लोग कत्ल कर रहे हैं, यत्न नहीं करते हैं, गायों का यत्न होना चाहिए। और हमारे समाज में कई भक्त फेयर एंड लवली लगाते हैं, फेयर एंड लवली लगाना नहीं चाहिए वास्तव में, क्योंकि फेयर एंड लवली में एक प्रकार का गायों से बनाया गया एक तेल होता है, गाय को जो मांस निकाल दिया जाता है, मांस से एक प्रकार का तेल निकालता है, उसको कहा जाता है कि बीफ टेलो, और एक प्रकार कई प्रकार का जीव ओट के ये से डार्क टेलो इत्यादि तेल निकालते हैं, तेल निकाल करके उसको क्रीम बनाते हैं, जैसे इमामी, पॉन्ड्स, निविया और फेयर एंड लवली, ये सारा जो लगाते हैं, सुबह सुबह उठते ही हम गायों के खून से बनाया गया ये क्या ना ब्लड मांस से निकाल गया तेल को लगा लेते हैं, तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, चार नियम का उल्लंघन हो जाता है अनजाने अनजाने में। ब्रश जो करते हैं सुबह उठते ही, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, शिवा का इत्यादि इत्यादि जो पेस्ट होता है उसके अंदर भी ये सारा चीज डाल दिया गया है, जो ठीक नहीं। आजकल तो सागुदाना में भी डाल दिया गया, एक प्रकार का जिलेटिन नाम का आता है केमिकल्स, सागुदाना में भी डाल दिया जाता है, आइसक्रीम में भी है, मैगी में भी है, नूडल्स में भी है, सब कुछ में है। तो इसके कारण ये सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि गो प्रोडक्ट जो उन्होंने उठाया, गायों के प्रोडक्ट तो यूज होना चाहिए। गायों के मूत्र इतना पावरफुल है, डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद। तीन महीने में अगर गाय का मूत्र रोजाना एक कप, हाँ आधा कप पी ले, उससे पहले रात को मेथी ग्लास में भिगा करके सुबह उठ करके मेथी को चबाते हुए खाएंगे, उसके साथ वो जो पानी में भिगे थे उसी पानी को घुट घुट करके पी लेंगे, और उसके आधा घंटा के बाद गायों के मूत्र को पी लेंगे आधा कप, देसी गाय का होना चाहिए मूत्र, देसी गाय का नहीं अथवा और किसी गाय का नहीं, भैंस का नहीं, किसका, तो अगर वो होगा तो फिर जाकर के आपका जरूर डायबिटीज 3 महीने के अंदर 100% ठीक हो जाएगा, ऐसा टेस्ट किया गया है, एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट फील्ड में देखा गया। और एक डेंड्रेट्स नामक एक बीमारी होती है, ये बीमारी ऐसा है कि एक बार एक मरीज का हुआ, मुंबई का शायद है, मरीज हुआ था जो उसका ये फिंगर से लेकर के वाह यहां तक वो चर्म के अंदर चला गया था। ये बीमारी ऐसा होता है जो शरीर के अंदर जितना सारा सेल्स होता है उसको डैमेज कर लेता है, भयंकर होता है, डॉक्टर ने कहा हाथ को काटना पड़ेगा, तो फिर वो घबरा गया, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया उन्होंने, तो फिर वो जब गए तो फिर उन्होंने कहा कि आप हर दिन गेंद का जो फूल होता है, पुष्प होता है गेंद, गेंद कहते हैं ना आप, है गेंदा, गेंदा का जो पुष्प होता है उसके साथ गाय का, देसी गाय का मूत्र को मिला करके चटनी बना करके वहां पर लगाओ। तो उन्होंने लगाया, 9 महीने में वो जो हाथ को काटने वाला डॉक्टर कह रहा था काटना पड़ता, वो पूरा ठीक हो गया। गाय का मूत्र का इतना महिमा है, गोबर का भी महिमा है। गाय का एक मूत्र 1 लीटर का हम 400 रुपये में सेल करते हैं, और गायों के 500 रुपये में, और गायों के मूत्र से निकलने वाले अर्क 400 रुपये पर लीटर सेल करते हैं। मोतियाबिंद जिसका होता है रेडिनल डिस्प्लेसमेंट अथवा काला पानी, इतने इतने बीमारी जिसका होता है, गाय के आंख के अंदर ये सारा चीज डाला जाता है, क्या ना गाय का मूत्र आंख के अंदर इंसान के, इससे भी कई सारा फायदा होता है। गाय का मूत्र का इतना फायदा है, देसी गाय होना चाहिए। तो बहुत छत्तीसगढ़ में बहुत आजकल मिल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।
लेकिन ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये डाबर के यूज नहीं करने चाहिए या कोई भी, केवल हमारे जो गौरक्षा से बन रहे उसके पतंजलि है। क्योंकि क्या है कि बाकी ये जो डाबर के जो निकलते हैं, डाबर की एक कंपनी भी है इमामी,
इमामी
वो उसकी कंपनी है। हाँ, वो वहां से प्रॉफिट लेते हैं तो यहाँ वो इमामी में यूज करते हैं। तो हमें केवल हमारे गौरक्षा के जो हमारे पतंजलि है या अभी हमारे
हमारी गौशाला है जो भी हो,
उनके यूज करने चाहिए।
हमारे भी गुप्त प्रोडक्ट होता है वृंदावन में, कई सारा चीज बनाया जाता है जिसको हम बताइए तलाशरी का भी बनाते हैं, वहां पर भी गुप्त प्रोडक्ट होता है। हरे कृष्ण वृंदराज श्रीमद भागवतम की, लीला प्रभुपाद महाराज की, गौर प्रेमानंद
गौ माता की जय।